ओम शांति। आदरणीय गीता बहन जी हम सबके बीच में हैं, एक हाथ की ताली से हम सभी उनका स्वागत करते हैं। कल सूरज भाई जी आपसे एक सवाल पूछ रहे थे व्यर्थ संकल्पों के बारे में, तो हम कई बार नेगेटिव संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है, और खासकर जब समस्याएं आती हैं तो मन सहज ही व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है। तो कैसे हम व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बने, इस विषय पर हम सुनेंगे गीता बहन जी से। आप सभी परिचित भी होंगे, आप 40 से भी अधिक वर्षों से यहाँ मधुबन में यज्ञ में समर्पित हैं। शुरू में आप अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत में रहे, भावनगर सब जोन के 14 वर्षों तक इंचार्ज रहे, फिर 93 से आप यहाँ ज्ञान सरोवर में मधुबन में आवास निवास में अपनी सेवाएं देते थे, साथ साथ मनोहर दादी जी को भी आंतरिक प्रशासन में मदद करते थे, और अभी कुछ वर्षों से आप शांतिवन में ही रहते हैं और मधुबन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के होते हैं या मेहमानों के होते हैं, उन सभी में आपके क्लासेस होते हैं। आप बहुत ही अंतर्मुखी, मननशील, गंभीर व्यक्तित्व हैं और ज्ञान की गहराई को सहज शब्दों में सबके सामने स्पष्ट करते हैं। देश विदेश में भी आपका जाना होता है और आपके अनुभवों से सभी लाभ लेते रहते हैं। इसके अलावा बिजनेस इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अभी हम सुनेंगे गीता बहन जी से।
ओम शांति। बाबा के मधुबन घर में आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान से भाई बहने आए हैं। भारत के इतिहास में कुरुक्षेत्र का भी गायन और वर्तमान में जम्मू कश्मीर का भी महत्व है। दोनों युद्ध से जुड़े हुए स्थान है और आप युद्ध से पर शांति की स्थिति के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा ने हम सबको बहुत ही सुंदर सेफ्टी का कवच दिया हुआ है। बाबा की याद हमारी बेहद की स्थिति और हमारी आत्माभिमानी स्थिति ये हमारी सेफ्टी के साधन है। बेहद की स्थिति है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम इस गुह्य राज को समझ सकते हो कि मेल हो या फीमेल हो सब सीताएं हैं। था ना आज की मत में, दुनिया में तो देह की लिमिट में है तो वो तो समझेंगे कि स्त्री शरीर है तो सीता है, पर बाबा की भाषा में शरीर भान से ऊपर सभी आत्माएं सीताएं हैं और बाबा हमारा एक निराकार राम है। भक्ति में सुना होगा कि जब मीरा वृंदावन गई थी साधु महात्माओं के संग में रहने के लिए, तो बहुतों ने टीकाएं की थी कि सारे पुरुषों के बीच में ये एक महिला आ गई है, तो किसी ने उसको कहा होगा कि भाई यहाँ तो सारे ही पुरुष है, आप इसके बीच में कैसे आए हैं। तो वो जवाब देती हैं कि मैं तो समझती थी कि पुरुष एक कृष्ण ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो उस महात्मा की भी आंख खुलती है कि हम अभी तक देह भान में ही है। तो बेहद की स्थिति है ना, देह के सभी सीमाओं से पार, न जाति न ज्ञाति न भाषा न प्रांत न आयु, सभी सीमाओं से ऊपर बेहद की भावना, आत्मभान की स्थिति। और जब हम उस आत्मभान की स्थिति में होते हैं तो देखने वाला भी आत्मभिमानी ही रहेगा, देह भान में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति सेफ्टी का साधन है। दूसरे के वाइब्रेशंस भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते। और बाबा की याद, तपस्या, एक सच्चा कवच, बाबा की याद से एक ऐसा पवित्रता का प्रभामंडल, ओरा कहते हैं ना, एक ऐसा हमारे आसपास क्रिएट होता है कि उसमें हम दूसरों को दिव्य ही नजर आते हैं। तो ये हमारी सेफ्टी के साधन है। और बाबा ने सदा ही हमें कहा है कि संगम युग में हमें अपनी शक्तिशाली, शुद्ध और श्रेष्ठ आत्मस्थिति बनानी है। अभी की बनाई हुई स्थिति के आधार से ही संगम की जो हमारी अंतिम स्टेज है वो ही सतयुग की पहली स्टेज बनेगी, है ना। हम उसी स्टेज से सतयुग शुरू करेंगे। हम जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, सेवा सहयोग कर रहे हैं, संगम युग में ये जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उससे अल्टीमेट ऊंची अवस्था ही तो बनाना है ना, एक शक्तिशाली स्थिति बनानी। आज भी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान योग के संस्कार बनते हैं तो वो आत्मा लेकर जाती है और फिर वापस बचपन से वो ज्ञान योग के संस्कार उनके इमर्ज होते हैं। तो हमारा जो भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, हमारा लक्ष्य सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ समझना नहीं, सिर्फ अभ्यास नहीं, लेकिन हमें अपनी एक स्थिति और स्वरूप बनाना है, एक शक्तिशाली स्थिति। ताकि कोई भी परिस्थिति में हम चलित ना हो जाए, संगठन में रहे या अकेले रहे, हम अपने ज्ञान योग की स्थिति में अचल अडोल रहे, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। भाई संगठन में है तो दिनचर्या में चले, मर्यादा में चले, कोई देखने वाला नहीं है तो ढीले हो गए, हाँ ऊपर नीचे हो गए, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखते थे और कहते हैं कि जहां भी बाबा को देखा और जब भी बाबा को देखा सबको सदा बाबा विशेष ही दिखाई दिया, कभी बाबा साधारण हल्की स्थिति में नहीं दिखाई दिया, एक विशेष रूहानी स्थिति में ही दिखाई दिया। हमें भी वही बनना है। अवस्था जिसको आज बाबा ने कहा जमा करने का युग, जमा है तो पावरफुल है ना, खाली है तो कमजोर है। कहते हैं कि व्यक्ति कितना कमाता है उससे धनवान नहीं बनता है, कितना बचाता है उससे वो धनवान बनता है, कितना खाते हैं उससे शक्तिशाली नहीं बनते हैं, कितना हजम करते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं। तो जमा एक है बाबा के कार्य में समय संकल्प अपनी सब शक्तियां साधन सफल करना, और एक है सफल करने के बाद भी जमा होना। दोनों में अंतर है। बाबा का ज्ञान मिला है तो अब हम अपना समय शक्ति तन मन धन मन वचन कर्म हम वेस्ट तो नहीं करेंगे, सीधी बात है। समझना माना ही उसे सही कार्य में लगाना। बाबा समझ देते हैं, हर बात की समझ देते हैं। हम जितना गहराई से और विस्तार से समझते हैं तो हमारे में वो सद्विवेक आता है, दिव्य बुद्धि आती है, हम परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि अब मुझे अपना मन वचन कर्म और अपना तन मन धन कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। तो नेचुरली हम बाबा के कार्य में उसको लगाते हैं, सफल करते हैं। आपके पास आज एक घंटा फ्री है तो नेचुरली आप क्या करेंगे, या तो पुरुषार्थ करेंगे या सेवा करेंगे। वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत स्पष्ट है कि आत्मा को प्राप्ति किस में है, कल्याण किस में है। पर सफल करने के बाद जमा किसका होता है? सफल तो किया, पर अगर बाबा कहते हैं मैंपन आया, अभिमान आया, वर्णन करते रहे, ज्यादा उसका नाम मान शान लिया, तो वो तो माइनस होगा ना, क्योंकि उसका रिटर्न हमने ले लिया। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है कि एक तो वेस्ट नहीं करना, सफल करना, और सफल करने के बाद भी अटेंशन चाहिए कि मैंपन, मेरापन उसमें ना आ जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि निमित्त भाव में रहे, निर्माणता में रहे। अगर अधिकार बना रहा कि मैंने ये सोफा लेकर दिया था सेंटर में, किसी को अगर हम कहते हैं, वर्णन करते हैं, इसका मतलब कि अभी तक वो मेरा ही मैं समझ रही हूं ना, वो तो दे दिया ना बाबा को। तो वो मैंपन या अधिकारीपन वो हमारा माइनस करता है। इसलिए जितना जमा उतनी समर्थ शक्तिशाली स्थिति। स्थूल रूप में भी जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, जमा है, तो वो तो निश्चिंत रहते हैं ना, घबराहट नहीं होती है कोई मुसीबत आ जाए, नुकसान आ जाए, कोई खर्च आ जाए, तो वो चिंतित नहीं होते हैं। उनको पता है कि मेरे पास जमा है। तो हमारा भी जितना जमा, जमा तो सत्कर्म ही होता है, गलत कर्म तो हमारी शक्ति को माइनस करता है ना, कम करता है। तो हम ज्ञानी तो आत्माओं को सत्कर्म करने के बाद भी अटेंशन देना है कि करते समय निमित्त भाव, बाबा ने ही दिया है, बाबा ने ही दिया है ना कि अपनी मेहनत से पाया है, क्या समझते? क्योंकि बाबा ने हमारे विचार में, वाणी में, कर्म में शक्ति भर दी है, हमारी पर्सनालिटी में प्रभाव भर दिया है। आज हम बाबा के बने हैं, हमने अपना जीवन पवित्र योगी बनाया है, तो हमारा कितनी वैल्यू है, हमारा कितना प्रभाव है, लोग कितनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं। तो ये अंदर से स्पष्ट हो कि आखिर बाबा ही देने वाला है। तो करते समय भी निमित्त भाव कि बाबा मालिक है, हम निमित्त है, बाबा करावनहार है, हम करणहार है, और करने के बाद भी निर्माणता, करने के बाद भी निर्माणता, अभिमान नहीं बार बार, वर्णन नहीं बार बार, महिमा की इच्छाएं नहीं। हम जो कुछ श्रेष्ठ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए? खुद के लिए हम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं ना। बाबा पर तो उपकार नहीं कर रहे ना, खुद के लिए हम कर रहे हैं। तो वो शक्ति, सत्कर्म की शक्ति जमा होती है, इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। फिर कोई भी आकर्षण या कोई भी विघ्न हमें हिला नहीं सकते। समर्थ स्थिति माना कोई भी प्रभाव में नहीं आना, हलचल में भी स्थिर रहना। हमें अपने भगवान में विश्वास, हमें अपने भाग्य में विश्वास, हमें अपने सत्कर्म में विश्वास कि हमारे अच्छे कर्म कहीं जाएंगे नहीं, हमने जो कुछ अच्छा किया है वो हमारे साथ ही रहता है। ये अंदर से आत्मा को दृढ़ रहेगा, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। और जैसा इस सीजन में बाबा ने कहा है कि स्वस्थिति की आवश्यकता है, संगम युग का फाइनल रिजल्ट है स्थिति। हमारी शक्तिशाली ज्ञान के अनुरूप अवस्था, वो हमारा रियल अचीवमेंट है। व्यक्ति सारा वर्ष पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, पर एग्जाम में पास होता है वो उसकी अचीवमेंट है ना। पूरा वर्ष पढ़ा पर परीक्षा में अच्छी रीति से पास नहीं हुआ तो अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे। तो हमने पूरा संगम युग पुरुषार्थ किया, सेवाएं की, उसका रिजल्ट आना चाहिए हमारी श्रेष्ठ ऊंची, साधारण नहीं। बाबा क्या कहते हैं, पास विथ ऑनर। तो ऊंची श्रेष्ठ और शुद्ध प्योर शक्तिशाली स्थिति। हमने कितनी भी सेवा की, अनेकों के जीवन बनाए, जरूर हमें उसका फल मिलता है, पर व्यक्ति को संतुष्टता और खुशी तब होती है जब वो खुद भी अचीव करता है। मैंने सबको सिखाया पर मैं ही फेल हो गई तो खुशी नहीं होगी ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो ये चेक करना है, दुनियावी रीति से, कारोबार की रीति से हमने कई बातें अचीव की है, समझो भाई हम सीनियर कि हम 40 साल से ज्ञान में, चलो हमने ये भी अचीव किया, वह ये सर्विसेबल है, हाँ ये सेंटर के मुख्य है, ये निमित्त है, ये इंचार्ज है, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, ये बहुत अच्छे स्पीकर है, इसको फिर भी लौकिक ही अचीवमेंट कहेंगे। दुनिया में भी बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं। संगम युग में क्या अचीव करना है? संगम युग में हमें क्या पाना है कि कितना हम आत्मभिमानी हैं, कितना हम एक बाबा की लगन में रहते हैं, कितना हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रहती है, कितना हम निमित भाव निर्माण भाव में रहते हैं, कितना हम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहते हैं। संगम युग में तो ये अचीव करना है ना? वो हमने कहां तक किया? इसलिए हमारी स्थिति श्रेष्ठ, शुद्ध और शक्तिशाली हमें बनाए। उसके लिए हमारा हर चीज बताए ना, पढ़ाई, त्याग, तपस्या, सेवा, सहयोग, ये जो भी हम पुरुषार्थ और सेवा के नाम पर जो कुछ हम करते हैं वो हमारा जमा होना चाहिए। और वे मैक्सिमम जमा करे और कम से कम वेस्टेज, तो पावरफुल बनेंगे। तो कम से कम माइनस का खाता, कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत कुछ बता दिया, वेस्ट ना हो। मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगी कि व्यर्थ संकल्प इसलिए आते हैं क्योंकि ज्ञान के राजों को हमने समझा नहीं है। ज्ञान के जो गहरे राज बाबा ने बताए हैं वो हमने समझा नहीं है, तब व्यर्थ विचार आते हैं। चाहे आत्माओं के पार्ट को नहीं समझा है ना। अक्सर व्यर्थ किसके बारे में चलता है, जिससे हम प्रैक्टिकली जुड़े हुए हैं, है ना। दुनिया तो बहुत बड़ी है, पर हमारा मतलब पूरी दुनिया से नहीं है। हमारी दुनिया तो वही है ना, जितनों को हम जानते हैं, जितनों से हम कनेक्टेड रहते हैं, जितनों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, जीवन जीते हैं, उतनों से ही है ना। तो हमारे से रिलेटेड, हमसे संबंधित जो भी आत्माएं हैं, चाहे लौकिक हैं, अलौकिक परिवार की हैं, या जहां हम नौकरी धंधा करते हैं वो कार्यक्षेत्र की हैं, या जहां हम रहते हैं क्लोजली, तो हम उनसे ही कनेक्टेड है ना। जब उन आत्माओं के स्वभाव संस्कार, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें व्यर्थ विचार चलता है। तो वहां जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, आज भी बाबा ने कहा ना कि अपसेट नहीं होना चाहते हो तो क्या करो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहो। माना आत्माओं के वैरायटी स्वभाव संस्कार, उनके वैरायटी कर्म चलन को देखते हुए भी अंडरस्टैंड करना, बाबा ने कहा ना नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहना, ज्ञान स्वरूप बनकर देखना, उसे समझना। वह ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, सवाल ही नहीं है ना। उसको रोल ही वो मिला है, क्यों का प्रश्न ही नहीं है ना। हमें समझना है उस आत्मा के पार्ट को, इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शीपन की सीट पर सेट होकर, अर्थात नॉलेजफुल बनकर हर आत्मा को देखना है, समझना है। ड्रामा की बेसिक पॉइंट कौन सी है कि यहां एक ना मिले दूसरे से, यही तो इसकी बेसिक बात है, वैरायटी। और इंसान को क्या अच्छा लगता है, वैरायटी अच्छा लगता है ना। रोज ही रोज एक ही चीज खिलाते रहे तो अच्छा लगेगा, वैरायटी ही अच्छा लगता है। पर अगर हम न समझ पाए तो वो देखकर हमें संकल्प चलते हैं, और व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो वो सिर्फ हमारी मनसा को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मन डिस्टर्ब होता है तो वाणी भी कुछ ना कुछ मुख से निकल जाएगा, हमारे अपने कर्म को भी प्रभावित करेगा और वायुमंडल में वाइब्रेशंस भी फैलेंगे। इसलिए खुद में फोकस रहना है, अपने आप के प्रति केंद्रित रहना है। यादगार महाभारत में क्या बताते हैं कि पांडवों कौरवों सबको द्रोणाचार्य जी ने बाण विद्या सिखाई थी और अंतिम परीक्षा में वो पक्षी की आंख को तीर मारना था तो केवल वो लक्ष्य पक्षी की वो दाहिनी आंख सिर्फ वो ही किसको दिखाई दी और बाकी सबको उनको आसपास का बहुत कुछ दिखाई दी कि मेरे को तो पेड़ भी दिखता है, बादल भी दिखते हैं, सब बताते हैं ना हरेक को क्या क्या दिखाई देता। तो लक्ष्य के अलावा आसपास का अगर और भी कुछ दिखाई देता है माना हम फोकस्ड नहीं है। स्कूल में एक ही क्लास में वैरायटी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई थर्ड क्लास लेता है, कोई डिस्टिंक्शन भी लेता है। जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेते हैं वो उनके बीच में ही रहकर पढ़ते हैं ना, पर उसका मतलब उनकी अपनी पढ़ाई से है और बातों से नहीं है। कौन विद्यार्थी आता है नहीं आता है, पीरियड मिस करता है, पीरियड में भी बेध्यान रहता है, वो इन बातों में नहीं जाते। तो संगम युग में हमारा भी मतलब क्या है, हम और बाबा बस, और बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये तो बाबा ने हमें सुविधा करके दी कि हम मिल करके पढ़े, संगठन बना के दिए। एक अकेला कितना पुरुषार्थ कर सकता है, एक अकेला कितनी सेवा कर सकता है, तो बाबा ने हमें संगठन बना के दी। बस, पर हमारा मतलब तो अपना लक्ष्य सिद्धि से है कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, कि मुझे एक बाबा में मगन रहना है, मुझे बाप समान बनना है। हमारा तो यही लक्ष्य है ना। और बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो निमित्त है, जिम्मेवार है, वो और बात में जाएंगे क्योंकि उनका रोल है सब पर ध्यान देना। पर अगर हमारा रोल जवाबदारी का नहीं है तो हमें इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना अच्छा पुरुषार्थ करें, ऑटोमेटिक हमें देखकर और भी करेंगे। कल की मुरली में बाबा ने वो ही कहा ना कि आप दूसरे को नहीं देखो, कौन करता है, कितना करता है, आप करते चलो, अपने आप दूसरे आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो एक तो हर आत्मा के पार्ट को समझना है, ड्रामा को टोटल समझना है, कि किस प्रकार ड्रामा बदल रहा है। क्यों बाबा ने आदि मध्य अंत बताया? ताकि हम समझ सके। अगर पूरा बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता है तो प्रश्न होते हैं ना कि ड्रामा ऐसा कैसा। पर बाबा ने शुरू से आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया तो हम समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है। जैसे दुनिया में जिनको नहीं पता है उन लोगों को तो बिचारों को शॉक लगता है ना कि ये क्या हो रहा है संसार में, मेरे बेटे ऐसे क्यों, मेरा परिवार ऐसा क्यों, ये क्या हमारे जीवन में हो गया है ना। उनको प्रश्न होते हैं ना क्योंकि उनको आदि मध्य अंत पता नहीं। पर हमारे साथ हमारे सामने कुछ भी होता है, प्रकृति से होता है, आत्माओं से होता है, तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ने पहले से हमें बताया है कि ये सब होना है। ये बाबा ने पहले से बताया, क्यों क्या का प्रश्न नहीं। व्यर्थ नहीं चलेगा, भय नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने पहले से बताया है ना? और वो पढ़ाई नित्य करते रहने से आज हमारी अवस्था बनी है। हम हिलते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, हम समझ पाते हैं कि ये अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, रहा सहा बचा खुचा आगे पीछे का सब हिसाब चुक तो हो रहा है, क्लियर हो रहा है सब, तो प्रश्न नहीं होते हैं, व्यर्थ नहीं होता है। तो मैंने ये देखा है कि जितना ज्ञान और योग की गहराई है उतना हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, अभी काजी दुबले क्यों हैं? सारे गांव की फिक्र है। हमारी स्थिति क्यों नहीं बनती है? क्योंकि सबकी फिक्र हम करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों, इधर ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों है ना, इस सेंटर में ऐसा क्यों, ये बहन ऐसी क्यों। बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने आप को देखो और बाबा को देखो और बाबा को फॉलो करो। बस बाबा ने कहा है तुम दूसरों को बाप देख लेगा, तुम निश्चिंत रहो। कई बार हम सोचते हैं इनको तो मैं सबक सिखाऊंगी, ये इनको ठीक करना है पहले। बाबा ने कहा तुम छोड़ दो, इस दूसरे को मैं देख लूंगा, तुम अपना देखो और बाप को देखो। कर्म का सिद्धांत इतना अटल है कि हमें निश्चिंत रहना, थोड़ी सी धीरज हिम्मत चाहिए बस, है ना। अपने आप ड्रामा फिर हमें बताता है कि कैसे अपना किया अपने को ही फल मिलता है, आगे या पीछे। तो व्यर्थ में शक्ति नहीं जाएगी। और अब तो हम अंत पर पहुंच गए, लगता है कि नहीं लगता है? अब हम संगम के अंत पर आ गए हैं, ये लग रहा है? भाइयों को नहीं लग रहा? भगवान को जो समझाना था वो उसने समझा दिया है। बाबा ने इस बार क्या किया? सिर्फ प्यार किया, किया कि नहीं? हर मुरली में वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, मेरे बाबा मेरे बच्चे। भगवान ने सिर्फ प्यार किया। क्यों? समझ गए ना? कि भगवान को जो बताना था वो उसने बता दिया है, वो हमारा रिस्पेक्ट रखता है, अब वो हमें कुछ नहीं कह रहा है। ये भी उनका हमसे साक्षी हो जाना है कि अब आप जानो और आपका पुरुषार्थ जाने। बाहर देखने की बात नहीं है कि टाइम हो चुका है या अंत पर आ गए, हम अपना ही बाबा का पार्ट देख लें, अपने ही बड़ों को देख लें, तो सारा साल पढ़ाई न करने वाले, घूमते रहने वाले भी वर्ष के अंत में परीक्षा आती है तो क्या करते हैं? वो भी उस समय अलर्ट हो जाते, तो हम होंगे कि नहीं होंगे? तो ये समय, जिस समय के दौर से संगम युग गुजर रहा है, वो अटेंटिव होने का समय है। ये व्यर्थ में जाने का समय नहीं है। एक समय था भगवान ने सबका कल्याण करने के लिए हमें सेवाधारी बनाया, सारे विश्व का सोचने के लिए कहा। हम हर शहर गांव गांव गली गली घर घर में गए, हमने सबके कल्याण का सोचा। अब बाबा कहते हैं अब वापस खुद के प्रति आ जाओ, अब अपने प्रति फोकस हो जाओ। अब हम अपनी स्थिति से, भावना से, संकल्पों से सेवा कर सकते हैं। और सेवा के निमित्त हम आत्माओं के लिए, सेवा के लिए सोचते हैं, वो भी तो हमें बल देता है। पर सेवा के निमित्त आत्माओं का सोचते सोचते कई बार हमारी गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है, फिर हम जो जरूरी नहीं है उन बातों में चले जाते हैं। फलाना ज्ञानी ऐसा है, फलाना ज्ञानी ऐसा है, फिर हम इन बातों में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं आपका कार्य है सबको संदेश देना, मनसा से भी सेवा करना, चलन और चेहरे से सेवा करना, एग्जाम्पल बनना, बाकी हर आत्मा की अपनी तकदीर। कहा ना बाबा ने, तुम अपना संदेश दो। तो वास्तव में सही तरीके से की हुई सेवा अवस्था बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। बहुत शुरू में हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, तो उस समय बाबा से सब बात छोटी मोटी पूछते थे, तो कुछ बैठे थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा वैसे अवस्था बहुत अच्छी रहती है, पर सेवा में आते हैं ना तब खिटपिट होती है, थोड़ी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि अलौकिक सेवा स्थिति को अलौकिक बनाने वाली है। अगर अलौकिक सेवा करते हुए स्थिति डिस्टर्ब होती है, मीन्स तुमको सेवा करने का तरीका नहीं आता है। समझा? तरीका क्या है? न्यारा और प्यारा। जैसे दुनिया से हम डिटैच हो गए तो उनके बारे में हमें ज्यादा संकल्प नहीं चलते। हमें पता है कि वो कलयुग में हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनका अपना कारोबार है, तो हमें कोई ज्यादा संकल्प नहीं चलते। हमें इस अलौकिक परिवार में भी न्यारा और प्यारा रहना है। हमें आपस में एक दूसरे अटैच नहीं हो जाना है। जहां आप व्यर्थ की पंचायत करते हैं, ये भी एक दूसरे अटैच होना है। तभी व्यर्थ में बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार में भी कमल फूल समान बनना है। सिर्फ कलियुगी कीचड़ में कमल नहीं, लेकिन हमें यहां भी कमल फूल न्यारा और प्यारा बनना। हम बाबा के लिए क्या क्या कर सकते हैं वही सोचना है और करना है। कौन क्या करता है और कितना करता है उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। हमारा बाबा से कमिटमेंट क्या है कि बाबा जो आप कहेंगे वो ही हम करेंगे। हमारा कमिटमेंट ये तो नहीं है ना कि ये करेगी तो मैं करूंगी, ऐसा है कमिटमेंट? हाँ नहीं, हम कोई किसी के आधार पर बाबा के नहीं बने। तो ईश्वरीय परिवार में भी न्यारा प्यारा और शुभ भावना। बाबा कहते ना साक्षी और शुभ भावना। हमें अंदर से शुभ भावना है, पर अब ज्ञानी तो आत्मा खुद समझती है इसलिए हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। लौकिक दुनिया से तो हम वैसे ही डिटैच हो गए, और लौकिक परिवार में तो हमें ही एग्जाम्पल बनना है। हरेक को अपने अपने लौकिक परिवार में आदर्श बनना है, न कि हमें उनकी बातों में बेवजह माथा मारना है। हमें खुद आदर्श बनना है, उनको लगे कि हमारे बीच में ये एक तपस्वी है घर में। जैसे कहते हैं ना कि एक नाव में नाव डूब रही थी, पर एक उसमें भक्तिन सती थी, तो लोगों को ये विश्वास था कि इसके कारण भी हम डूबेंगे नहीं, पार हो जाएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे जिस भी परिवार में हैं, परिवार वाले ज्ञानी बने न बने, वो उनका अपना रोल है, पर उनको ये हमसे अनुभव होना चाहिए कि हमारे बीच में ये योगी आत्मा है, इसके तप से भी हम पार हो जाएंगे। बड़ी दादी जी ने एक बार कहा था कि आप अज्ञानियों को कहते हो कि आप ज्ञान में आ जाओ, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम कहते हैं ना, कोई अपना दुख मुसीबत वर्णन करता है तो हम क्या कहते कि आप आओ सेंटर में, आओ बाबा का ज्ञान लो, आपको बहुत मदद मिलेगी, कहते हैं ना। हम अज्ञानियों को कहते हैं कि ज्ञान में आ जाओ तो आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो दादी ने कहा, मैं कहती हूँ ज्ञानियों को कि तुम ज्ञानी योगी बन जाओ तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो बाबा की याद का आनंद अनुभव करेगा, उसको और बातों में जाने का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। उसे बाबा की याद में इतना सुख अनुभव होगा कि वो और बातों में जाएंगे ही। तो ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। पांडव भवन की भट्टियों का प्रोग्राम आपसे शुरू हो रहा है, आप पहला ग्रुप है तपस्वियों का। इसलिए ऐसा फाउंडेशन डाल के जाना ताकि पीछे के सब ग्रुप शक्तिशाली अनुभव करें और अपनी अच्छी तपस्या की स्थिति बना कर जाए। ओम शांति। सभी खड़े हो जाएंगे बिल्कुल शांति से, डिटैच होकर। कब से आप बैठे हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, और पांच बातों में मस्त रहना है। पहला अभ्यास, स्वयं के सत्य दिव्य शुद्ध आत्मस्वरूप में मग्न रहे।
मैं तत्वों से परे दिव्य रूहानी शक्ति राइट साइड घूम जाए दूसरा अभ्यास बाबा में मगन रहना है बहुत कम समय बाकी रहा है भगवान के साथ रहने का मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे सर्व संबंध बाबा से मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से राइट साइड घूम जाए ड्रामा को साक्षी होकर देखना बाबा का साथी बनना अन्य सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखना ड्रामा एक्यूरेट है कल्याणकारी है संगम का ड्रामा ऊंचे ते ऊंचा है राइट साइड घूम जाए चौथा अभ्यास इस शरीर में रहते इस दुनिया में रहते मन और बुद्धि से सदा वतनवासी रहना बिंदु बन बिंदु बाप के साथ परम धाम में रहना या फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में रहना राइट साइड घूम जाए पांचवा अभ्यास दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सबको देना बाबा ने हमें सब कुछ दिया ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियां दी, प्यार किया, पालना की, वरदान दिए। अब हमें भी मास्टर दाता बन आत्माओं को देना है। बैठ जाए। ओम शांति।
गीता बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।